जिसकी बुद्धि असती हो गई, अभद्र हो गई। उन्होंने कहा ये तुम्हारा बालक लेकर गति आयम बदती, इसका स्वभाव की भक्ति इसको किसी ने नहीं दिया, किसी दूसरे व्यक्ति नारद नहीं, मैंने या हमारे गुरु जी ने या किसी व्यक्ति ने नहीं, इसको ऐसी भक्ति की बात नहीं। तुम्हारा यह लड़का ऐसे ही नैसर्गिक रूप में सब आदमी के रूप में ऐसा होता है। तो उसने देख उठाया, अरे बेटे परमार, तुम्हारी ऐसी असद बुद्धि जो हुई ये क्यों हुई, कैसे हुई, ऐसे क्यों असती हुई? जब तुम ऐसे इसके बारे में उन्होंने बताया, मतीज न कृष्ण बाबा कृष्ण के प्रति ऐसी जो अच्छी बुद्धि है ये अपने आप नहीं लग जाता, आप जो ये कारण है कि तुम्हारी ऐसी अभद्र मती की आपत्ति मती क्यों हुई, तो आपके जैसे लोग जो हैं ये भक्ति को असत्य ही करें, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसे ही देह में आप नहीं भक्ति की पसंद आने, पता ये बुद्धि इसकी बिगड़ गई, क्योंकि रख ली गले में माला लगा लिया, सीधा करने लगा भगवान का हरण कर, पता उसकी बुद्धि भी न ऐसा गुणानैव प्रेम प्रतिप्रोक्तो भूय महाचुरासुतम न चेत गुरुमुखी आई से कुतो अभद्रासति मति। यदि तुम्हारे गुरु जी ने ऐसा नहीं बदलाया, तुम्हारे गुरु जी मूर्ख है, वो अभद्र है, उनकी मति असती है, सारे शास्त्रों को उन्होंने ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया, कोई भी शास्त्र बाकी नहीं। यदि वो शास्त्रों को पढ़ करके और उन शास्त्रों में के अनुसार में उनकी भगवान कृष्ण के प्रति यदि मती होती तो अपने मान तुम्हारा विद्वान समस्त शास्त्रों को पढ़ने वाले गुरु जी नहीं जब उसको असार समझा भक्ति को तो उन्होंने ग्रहण नहीं किया, तो शत्रु दुष्ट कहता है उनकी मती असार है, वे असुर है, उन्होंने कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, और तुम ही समझ गया, हम मैंने नहीं समझा तुम ही समझ गया, सब जब तक विषय अभिमान शून्य निश्चिंतन महत्वनों की पदभूमि से अभिषेक नहीं हुआ है, अभिषेक तो माने क्या ना शिक्ष में स्नान करते हैं शरीर साफ हो जाता है, चित्त भी हो सकता है कि शुद्ध हो जाए, नहीं भी हो, हम उसके कार्य बहुत कम लोगों का होता है, बहुत कम लोग काम क्रोध इत्यादि नहीं जाता, भक्ति भी नहीं जाता, न जाने कितने दिनों तक करने के बाद में सब हो सकता है, जो हो वो भी होगा यदि वहां पर महत्व उठा करके उसको बुराए गंगा स्नान करने के लिए दो चार बात उससे कर दिया तो सब यहाँ पर अभिषिक्त मैंने क्या उनके कथा से उनके मुख से जो हरि कथा हुई तो कथा में जो डुबकी लगाई जिन्होंने उनकी मती तो भगवान में लग जाएगी, दूसरों किसी की मती नहीं लगेगी, तब तक वह मती भगवान के चरणों को स्पर्श नहीं कर पाती। इसका तात्पर्य यह इसके पहले ही एक श्लोक को बोला है जिसका अंतकरण विषयों में आ सकता है और जो भगवान विष्णु की भक्ति करने से ही जीवन सार्थक हो जाता है और यही यथार्थ में परम अर्थ है, इस चीज को नहीं जाना। वो क्या समझते हैं देह में आत्माभिमान होने से यह शरीर को जो कुछ सुख होता है सब कुछ मिलेगा, पैसे मिलने से इसको कुछ हो जाता है, मदिरा पान से होगा, मांस मछली खाने से होगा, और भी आसक्ति की वस्तुओं पाने से वो खुशी समझता है, इसलिए ऐसे लोगों की मती कभी भी भगवान में नहीं जाएगी, भगवान विष्णु को वो लोग नहीं समझ पाते, ये लोग बहुत समान वर्तमान में बाह्य अर्थ को ही अर्थ नहीं, परमार्थ को नहीं, भगवत भक्ति को नहीं बोलना। अच्छा भगवान की ये संसार में विषयों के लिए तो परस्पर झगड़ा विवाद राजनीति इत्यादि सब चलता है, परमार्थ के लिए कोई झगड़ा होता है? ये परमार्थ हम ही लेंगे तुम नहीं लेते, इसके लिए झगड़ा होता है कहीं? कैसी विचित्र बात, इतना बड़ा परमार्थ इसलिए कभी कोई नहीं, ना ही तुम मत करो हम ही करें। भाई ठाकुर जी के साथ तुम क्यों करता है रोज मैं भी करूं झगड़ा करते? आज तुम रोज बनाता है एक वर्ष से, अब मैं बनाऊंगा मैंने तो, इसके लिए झगड़ा कोई करता है? अच्छा गुरु जी की तुमने बहुत दिनों तक सेवा करी, मैं करूंगा, करेगा? तुम लोग गुरु जी के पास में बहुत कम लोग जाते हैं, बहुत करते थे, सात लड़का बहुत कम, उसमें अपना सब कुछ जिलांजलि देता थे उनके सुख लिए देते, इसके लिए कोई झगड़ा करेगा? इसके लिए कोई नहीं झगड़ा, किंतु है यह परम, किंतु संसार में कुछ एक कौड़ी के लिए भी ये चल रहा है, ये ऐसा है अर्थ विकास। जिनका अंतकरण विषयों में आ सकता है, उनका भगवान विष्णु, वो लोग भगवान को अपना परमात्मा नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी बुद्धि अर्थ बहुत वही अर्थ मानी, इंद्रियों के भोग के विषय को ही संग्रह में सारा जीवन लगा, परमात्मा नहीं लगा, इसलिए दुराशय है। अंतकरण इनका आशा मैंने अंतर करा, तो मैंने दुरा समस्त अनर्थों को दूर करने वाले पुरुषोत्तम भगवान के चरण समलोकन ये लोग स्पष्ट कभी नहीं, और ऐसे ही जो गुरु हैं इनके द्वारा भी नहीं होगा, दूसरों चरण नहीं होगा अपने आप को होगा, ये दोनों मिलकर के भी नहीं कर सकते, और आजकल ऐसा ही होगा। कुछ छठे हुए बदमा धर्मराज के गुंडे हो, वो परस्पर मिल करके कहते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं यही भक्ति, शुद्ध भक्ति वालों को दस ही आर कर देते हैं, वो समझते कि हम लोग धर्म के ठिकादार, वो लोग जैसे कि कुछ लोग हैं प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती को उन्होंने बाहर अपने समाज से कर दिया, वो कहते क्या है राधा कुंड में आए, राधाकुंड में आकर के प्रभुपाद ने जितने भी वहां पर बाबा जी थे उनको बुलाया तो कोई नहीं आया, अपने आप से कल्पना कर लिया कोई नहीं आया, तो मैंने पूछा कि भाई आप ये लोग क्यों नहीं आए, उन्होंने कहा कि आपको वैष्णव समाज के अंदर में नहीं मिली चीजें, हमने तो ये सुना है, उन्होंने लिखा है गौरी पत्रिका गौरी, हम बस ये वृंदावन में सबक मैं एक भी शुद्ध मध्यम अधिकारी में सब कनिष्ठ वैष्णव, तो वो कोई बड़ा नहीं कहेंगे कनिष्ठ अधिकारियों को जो महाभारत परमहंस विश्व को भक्ति है कर दिया, विश्व में यदि वो नहीं आते प्रभुपाद जी विश्व में भक्ति आ जाती, कोई समझता कि भक्ति क्या है विश्व में, ऐसा कोई विश्व का कोना नहीं है जहां पर उनकी पानी नहीं पहुंची, कभी उठा था ऐसे महापुरुष को जो ये कोई कह के वैष्णव नहीं है तो उनका तो दूसरे दर्शन करना भी महापाप है, ये लोग वैष्णव का विचार करेंगे, इसलिए इस बातों से खूब सावधान रहना चाहिए, खूब अच्छी तरह, इसलिए ये प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं नहीं चाह मती सावत को रूप कर पाती गुरु परमान दे सब महत अनुग्रह के अभाव होने से सत्व निश्चय पहले सत्व का निश्चय होता है, एक आदमी को ये विचार करो एक आदमी को जो शौच करने नहीं आता कुछ भी आता नहीं कुछ भी नहीं आता उनको पहले ब्रह्मचारी बनाया जाएगा कि गोपी भाव किया जाए क्या उचित है? बसवगम को शिक्षा नहीं दे करके उनको एकदम पहुंचा दिया गया गोपी भाव, जिसको सुखदेव गोस्वामी भागवत में भी वर्णन नहीं किया पहले परमात्मा में स्थित हो, ब्रह्मचारी हो, तो पहले शौच करना सकते, शक्ति करने के बाद में जिसको यही सब का ज्ञान नहीं और एकदम प्रभुपाद भक्ति से धन सरस्वती जी तो मंदिर भाव किसी को दिया ही नहीं दिया नहीं। उनका नाम क्या है? ये कौन लिखा? भक्ति ठाकुर जी कमल मंदिर किसने लिखा? स्वयं लिखा। उनके अंदर में ये चीज नहीं थी, उनको छोड़ करके जाने से और उनकी अवज्ञा करने से ये भजन होगा? ये सब का खूब अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। जो महापुरुष भगवत भक्ति का कृष्ण विश्व में प्रचार किया, सब लोगों को उद्बोधन किया, ऐसे महापुरुष, ऐसे महापुरुषों को निंदा इत्यादि नहीं की। इसलिए कहते हैं दसम स्कंद में मुकुंद महाराज ने भी ऐसे, अब इसका हम लोग पीछे बढ़े। शुद्ध भक्ति ने वैष्णवों का सम्मान देना सीखो, थोड़ा सा भी तुम्हें उसको बहुत अधिक सुख में प्रत्येक वैष्णवों का सम्मान करना सीखना। जो वैष्णवों का सम्मान नहीं देना सीखेगा, भक्ति देवी कभी भी उसका स्वीकार नहीं कर सकती। आइया महत्व भी नहीं कर पहले खूब अच्छी तरह से सोच विचार करके समझ करके भक्ति पत्नी हमको मन का दुख है। उत्तर मैं करूँ
सचिपुत्रमत्रस्वरूपम् तस्या गयूरिपुरम् माथुरीम् गोप्तवासिनी राधाकुन्दम् गिरिवरमहोराधिका माधुवासम् प्राप्तो यत्र प्रसूतिकृपया श्रीगुरु वंशकल्पतरो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यवन्दे गौरस्थिते यं प्रप्रजन्तमन्ते तमपेतति द्वैपायनो विरहकातया जिहा सुप्रेतन्मयतया सर्वोभिरे तं सर्वभूतविनयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न दिवां त्वया इति पीत्याय राधे तन्मां भागवत। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति के जितने भी ग्रंथ हैं उनका यह सार है, यदि भारतवर्ष से विधर्मी लोग हमारे वेदों को, पंडितों को, पुराणों को, यहाँ तक की गीता को भी या दूसरे समस्त शास्त्रों को यदि नष्ट भी करने केवल एक सीमा भागवत बची गए तो वो कभी जीवित है। एक सीमा भागवत ऐसा ग्रंथ है, इस ग्रंथ को अच्छी तरह से अध्ययन करने से, पठन पाठन करने से सार्वकालिक जितनी भी समस्याएं हैं, समस्त आदमी की नहीं, ये कभी पुराना ही नहीं होगा। सार्वकालिक जितनी भी समस्याएं हैं इन सबका इसमें सामंजस्य है, इसके द्वारा समस्त समस्याओं का समाधान होता है। ऐसा ये इसमें उन्होंने बताया, पहले नौ स्कंदों में साधकों की बात बतलाई गई और दसम स्कंद में सिद्धों की बात बतलाई गई। नौवे स्कंद में नारद ऋषि व्यास थे, सुखदेव गोस्वामी, ध्रुव जी, प्रहलाद जी, चित्रकेतु महाराज, ये सब साधक और इस तरह से साधन करके भगवान को पाया है, इसमें बतलाया गया। किंतु कहीं भी एक से लेकर के नौ स्कंद तक में ये नहीं देख लाया कि किसी भी इन साधकों ने कृष्ण के किसी रूप को छोड़ करके ब्रह्मा शंकर दुर्गा देवी गणेश किसी की आराधना की बात इसमें नहीं आई। और शास्त्र में है कि श्रीमद् भागवत में कृष्ण के या कृष्ण के जो रूप राम है, नृसिंह देव है, वामन देव है, कल्कि देव है, परशुराम है, बलदेव है, केशव दशविध रूप जय जगदीश, बस इन्हीं लोगों की उपासना की बात आई और किसी की। इन जितने भी उनके अवतार हैं उनमें रामचंद्र जी का विशेष महत्व उसमें भागवत ने दिया है। किंतु कृष्ण तो भगवान जिसने कृष्ण की पूजा की तो और देवताओं की और देवियों की तो बात क्या, समस्त अवतार राम तक की पूजा उसी में कृष्ण में ही हो जाती है। इस चीज को समझना चाहिए। यदि भागवत सुन करके भी देवता देवियों में और शंकर इत्यादि या ब्रह्मा की उपासना में ही चित्त लगा रहा तो इसका मतलब हुआ कि हमने भागवत सुना ही नहीं। देखिए जितने लोगों का हमने नाम बतलाया साधन करने वाले हैं, नारद जी ने किसी उपासना की, उनका मंत्र था क्या था, नारायण का मंत्र था। गुरु जी का मंत्र क्या था, वही नारायण का मंत्र था। चित्रकेतु का मंत्र क्या था, वही भगवान राम का ही नाम था, राम माने बोला हम कल्पना राम का नाम। ये प्रहलाद महाराज जी ने सिंह की उपासना की, ये कृष्ण का रूप है। वामन भगवान की उपासना की बात कही गई उसमें ये वामन देव कौन है, कृष्ण ही है। इस तरह से जितने भी देवताओं की बात है, अवतारों की उपासना का बात आया, सब जितने भी उपासक हैं उस सब लोगों ने किसकी आराधना, या तो कृष्ण की या उनके अवतार। अच्छा शंकर जी की बात है, शंकर जी को भारत में किस दृष्टि से देखा गया, शंकर जी प्रचेताओं को उसमें दिया गया हो बदलाया होगा ब्रह्मचारी जी प्रचेताओं को शिक्षा दी, कृष्ण ही राम ही या नारायण ही सबके आराध्य हैं। उन्हीं उपासना की बात बतलाई, नारद जी ने दक्ष प्रजापति के लड़कों को बार बार जो ब्रह्मचारी बनाया किसकी उपासना की बात कही, सुखदेव गोस्वामी को व्यास जी ने जो पढ़ाया भागवत उसमें किसकी उपासना की बात कही, राधा जी की उपासना की बात कही। इसी तरह से जब हम और चलते हैं दुर्गा जी का नाम भी एक जगह आया, कहां भद्रकाली के रूप में भक्त महाराज जी को बलि देने के लिए बलि महाराज कुआ ले गए, उनको बलि देने के लिए चोरों ने पकड़ करके और लेकर के उनको दूध खिलाकर पकवान खिलाकर गले में लाल कपड़े बांधकर और उनके सामने हाजिर कर दिया, तलवार उठा करके काटना चाहते थे, इसलिए दुर्गा जी प्रकट होकर के ये क्या, बस ऐसा जोर से हंकार किया संगोचित हुए और उन्होंने गले काट करके यज्ञ में उनको, ये विष्णु के भक्तों का तुम बलि देने के लिए लिया है मेरे पास में, इसलिए उनका नाम हो गया भद्रकाली, जो भगवान की शिव की आराधना करती हैं और उसी की शिक्षा देती हैं। जब भद्रकाली का नाम दिया है तो उसी रूप से एक जवाब और आया है, कंस ने कृष्ण की बहन को पकड़ करके मारना चाहा, कौन बहन, जो गोकुल में पैदा हुई थी कृष्ण के बाद, उसके पिछले पैर पकड़ करके मारना, सब हिसाब अर्थ पूजा रूप को, तो ये तू हमें क्या मारेगा, तुम्हारे माता बाबा अनंत पैदा हो गया कष्ट दिखाए, ये तो हमारी देवी कुल गुरु हमारी कुल देवता है और ये कृष्ण की आराधना की बात कर रही है, तो वहां भी देखो कृष्ण की बहन बन करके योग माया के रूप में जगत को कृष्ण के तरफ में लगाते हैं, कभी कात्यायनी बन करके गोपियों को कृष्ण के चरणों की जैसे उनकी मनोकामना करती है, क्या बोलती है, कृष्ण तुम्हारे पति हो, इन्होंने क्या कहा, प्रार्थना क्या किया, नंद पुत्र नंदगोपम देवी पति पुरुष मेरे पुरुष है। उन्होंने ये प्रार्थना की एक महीने तक उपासना की और उस समय कौन आया? जो माना मैं नहीं आई उस समय, जो मयाती भी जो अधिशास्त्री देवता उनके जो परम उपास्य है वो स्वयं यह दूसरा कोई नहीं देगा, मैं बांटूंगा और वही गोपियां राष्ट्रीय वहां कत्यायनी के पूजा के फल से भी उन्होंने ये प्रसन्न होकर के कृष्ण की भक्ति दी। शंकर जी को देखो अभी आगे प्रसंग आएगा, बनासुर के युद्ध में वो उनके तरफ से शामिल हुए और हाथ करके कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण। कार्तिकीय इत्यादि कब आया? गणेश जी का नाम कहीं आया ही नहीं, कहीं नहीं आया। इसलिए भागवत को समझ करके कृष्ण के चरणों में ही उपासना होनी चाहिए। तस्मिन् सुष्टे जगत सृष्टि चित्रकेतु महाराज जी का देखिए, लड़का नहीं हो रहा, अंगिरा ऋषि आए, नद्याज का ठीक है, तुमको पुत्र होगा, सुख दुख देने वाला, अंत में कुछ दिन लड़का से मर गए, फिर नारद जी आए और उनको शंकरसन राम का मंत्र दिया। इसके बाद में उनका चित्र कैसा सुंदर खींचा भागवत में, ये पीछे से मुक्त होने के बाद में पार्वती जी के अनुसंपात से ये पृथ्वीराज को इन्होंने भगवान की कैसी उपासना की, राक्षस होकर के भी असुर होकर के भी कृष्ण से ये प्रार्थना कर रहे हैं, मैं मुख से आपके गुणों का अनुवाद करूं, मन के द्वारा आपके गुणों का चिंतन करूं और शरीर से आपकी सेवा करूं। हजार पक्षा यो मातम खगा तन्य जगा वक्ष तरफ सुधारता प्रिया प्रिय विचितम विचन नाम दास देते। एक प्रेयसी एक प्रिया अपने प्रियतम के लिए जिस प्रकार से विरह में तड़फड़ाती है और मिलने पर उसकी सेवा करती है, मैं ऐसे ही मेरे भाव अभी नौ स्कंद तक में ऐसा कोई भाव नहीं आया, न प्रहलाद के चरित्र में, न ध्रुव के, न नारद के, किसी भी चरित्र में ये भाव अभी तक नहीं आया। तो ये चित्रकेतु महाराज का संग किसको मिला? वही नारद जी का। और नारद जी के बाद में किसका संग? उनके उपास्य कौन हुए? बलदेव प्रभु जी बलराम हुए और बलराम की कृपा से उनको गोपियों के अभाव इंद्रय में पाया। इसलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवत में चित्रकेतु महाराज जी अर्थात गोविंदपुर के भावना ही ऐसे है कि मैं गोपियों जैसी ही आपकी सेवा करूं। इसके पहले न नारद जी को हुआ, न प्रहलाद जी को हुआ, न ध्रुव की कबात भी किया और किसी को भी चतुर्दशी संवाद में भी इसका कोई भी बात जिक्र नहीं आई। तीनों ने थोड़ा सा छिप करके थक करके ये बतलाया, यदि भक्ति आपको देनी है तो ऐसे ही दीजिए जैसे प्रिया की प्रियतम की भावना, बस इतना सकल से सकते रख दिया। अतः तो गोपियों जैसे मेरे भाव हो, यहां तक तो साधकों का गया। किसी भी दूसरे देवताओं की उपासना की बात नहीं कही गई और कृष्ण की ही उपासना की बात करी गई। एक शांत कला कृष्ण तू भगवान, इसे भागवत पढ़ने का सुनने का एकमात्र फल होना चाहिए। राधा कृष्ण के चरणों में ही हमारी स्थिति हो, उनकी पूजा करने से विश्व के समस्त प्राणियों की पूजा हो जाती है, देवताओं की पूजा हो जाती है और यहाँ तक ही समस्त भगवान के अवतारों की भी पूजा हो जाती है। अब दसवें स्कंद में हम लोग चले, यहाँ पर सिद्धों यशोदा मैया के गर्भ से पूर्ण रूप में और देवकी मैया के गर्भ से ऐश्वर्य रूप में नारायण के रूप में ये मथुरा और गोकुल में एक समय में। यदि आराधना करनी है तो दूर से नहीं, मैं बहुत नीचा हूं, भगवान कृष्ण बहुत ऊपर हैं, रख करके नहीं। यदि उनकी आराधना करते हो तो ऐसा करो जैसे यशोदा मैया कृष्ण को अपनी गोदी में बैठा करके अपना चित्र मान करके करती है। ये और प्रहलाद जी का जो संबंध है, हनुमान और राम में जो संबंध है, उसे देखेंगे कोटिगुण या जसोदा देवी। नंद बाबा कहीं उपासक उपासक का जूता आराधक के सिर पर रख लिया जाए तो कैसा होगा? यदि मैं अपनी खड़ा हूं राधा कृष्ण के चरणों में रख दूं तो कैसा होगा? नर जाना पड़ेगा कि नहीं? नर जाना पड़ेगा। और नंद बाबा कहते हैं कि मेरी जूती जरा लाना तो और वो परम ब्रह्म और उसको अपने सिर पर रखते हैं, उनको डर नहीं लगा, डर नहीं लगा और नित्य करते हुए कृष्ण उनके आराध्य उनकी ड्यूटी जो कि जहां इधर उधर पहन करके चमड़े की ड्यूटी रबर का चप्पल नहीं चमड़िया की ड्यूटी और उसको अपने सिर पर रख करके और नाचती हुई आ रहे हैं, बतलाओ ये कैसा प्यार? इसलिए कृष्ण को यदि प्यार करना हो यही प्यार होगा जो तो राजी ने उस पर ब्रह्म को अपनी गोदी अपने पेट से गोद से जाया। ये मथुरा वाला जो जन्म है वो अंतिम जन्म है, पूर्ण जन्म नहीं है, बल्कि सुखदेव गोस्वामी का व्यास जी का नारद जी का ये सबका यही विचार है जसोदा के घर से निकले। और जसोदा मैया ने जितना स्नेह किया कि उनको बांध दिया, उनको चोर करार कर दिया कि तू चोर है। और गोपियों ने क्या करार दिया? केवल चोर ही नहीं, चोर से और भी अधिक, तू चोर है, लंपट है, भूत है, क्या निकाल दिया उस आराध्य इससे बड़े। इसलिए कृष्ण का यदि भजन करना है तो जसोदा जैसा प्यार करो, यदि इससे और ऊपर जाना चाहते हैं तो धीरे 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 बाल्य अवस्था में कृष्ण ने जसोदा जी के पुत्र होकर के और जो वहां की ग्वालियर सबका पुत्र बनकर के सबका बात जरा और बड़े हो गए पौगंड अवस्था तक 5 वर्ष से 8 वर्ष तक 8.5-9 तक तो सखाओं ने अपना सर्वस्व उनको दिया और कृष्ण ने भी अपना सर्वस्व दिया। और बराबरी पाया जसोदा मैया की यहां जरा कम नीचे और जसोदा मैया ऊपर नंद बाबा ऊपर और सखाओं के साथ बराबरी का भाव। तुम कौन सा बराबर आदमी है? हमारे पिताजी हैं खिदाम कहता है, तुम अपने को समझता कि हम बड़े हैं? अरे तुम्हारे बाबा को 9 लाख गाय हैं और हमारे बाप को 11 लाख। तू हमसे कुश्ती लड़ सकेगा? और लड़ते लड़ते कृष्ण को बचा देगा, कैसा सत्ता जिसके पीछे देखे बिना ना तो कृष्ण रह सकते हैं और न वो सखा रह सकते हैं। यदि प्यार करना है तो कृष्ण के साथ में ऐसा संबंध सखा का भाव हो। और यदि इससे ऊपर और चलना चाहते हो तब 21वें अध्याय में आओ दशम स्कंद के, जिसका भी वर्णन हो चुका है, जिसका देख रहे हैं कृष्ण अब बड़े बड़े गलियों को लेकर के वन में जा रहे हैं सखा गुरु के साथ, एक वन से दूसरे वन में जा रहे हैं। गैया को चराने के लिए कृष्ण जा रहे हैं या कि और कोई बात है? क्या बात है? चराने के लिए नंद बाबा को चरवाहा नहीं था जो अपने प्यारे प्राण प्यारे दुलारे कृष्ण को गोचरने के लिए भेज रहे हैं? और कौन से भागवत में ऐसा लिखा है कि ब्रज में इतनी सुंदर खास जननी है, एक जगह ही गाय चर करके अभा जाएंगी और पानी पी करके जमुना का उसको कहीं जाने की जरूरत है। वृंदावन में बाघ भाव नहीं है और थोड़ा सा हमारे सुहानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया बाघ मालूम नहीं है किंतु हिंसा नहीं कर, किंतु वृंदावन में अघोर सत्व अघोर तत्व मैंने क्या हिरण्य है जो कृष्ण को देखते ही नाच उठती है, कृष्ण से प्रणय की भीख मांगती है, गायें हैं जो कृष्ण को अपना बेटा मानती हैं, बछड़ियां हैं जो कृष्ण को क्या मानती हैं, वो और कुछ ऊपर मानती हैं, और जंगली जानवर बाघ और ये नदी में खड़ियाल कुमी ये सब नहीं है, वहां उनकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो भाई नहीं है। इसलिए कृष्ण को गायों की रक्षा करने के लिए लड़कियां लेकर के 2400 घंटा दौड़ने की जरूरत। वो तो सखाओं का ब्रजरस का वो सखरस पान करने के लिए और इनके भी अधिक गोपियों के साथ में ये करके ये जो अभी लीला चरित जो गोपियों के साथ में 5 अध्यायों का भी वर्णन कर रहे हैं जिसका जो वर्णन किया यही भागवत है। ये 5 अध्याय जो वर्णन किया गोपियों के साथ में कृष्ण का जो संबंधित में दिखाया गया और कृष्ण गोपियों की आराधना कर रहे हैं। कोई चीज मंगलाचरण होता है ना तो मंगलाचरण में अपने देवता की आराधना करके मंगल का आचरण किया जाता है। कृष्ण ने बंसी के ध्वनि में पूर्णिमा के दिन में उन्होंने बंसी माने शंख बजाया, ये मंगलाचरण किया, अपने आराध्य देवता को आवाहन किया। तो ये आराध्य देवता कौन से? श्रीमती राधिका, उनके परिकर लोग जो है ये कृष्ण का आने के बाद में कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका कैसे स्वागत करूं, ये सबका प्रश्न चाहिए। मैं सुंदर रूप से आप लोगों को बतलाया किन कारण आई मैं आपके लिए क्या करूं, कितनी उत्कंठा फल बल के गोपियों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तरह तरह की प्रेम करी बातें जिसको बुलाना होता है ना, जिसको बहस होती है वो बुलाती है। कृष्ण ने गोपियों को बुलाया और वहां आए। अब गोपियां परीक्षा कर रही हैं कि हमारा सच्चा आराधक है या नहीं। कैसे? इसलिए कुछ आकर के चुपचाप खड़ी हो गई। कृष्ण ने पूछा कैसे आप यहां आए? वो परीक्षा कर रही है, मास्टर बने हैं ना, मास्टर परीक्षा कैसे लेता है? तो वो चुपचाप ने देखे ये क्या है, हमको दर्शन करने के लिए आए थे, आप लौट जाए तो भी कुछ नहीं है। कभी अपने पतियों की सेवा करना सबसे सर्वोत्तम बात है। लंगड़ा विधा जैसा भी कोई हो, अर्थ जिसके पास नहीं है, ऐसे पतियों की भी सेवा करना ही स्त्रियों का परम धर्म है। गोपियों ने हाँ ना कुछ उत्तर नहीं दिया। हमको ये साकार स्मरण होता है, चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाते हैं, वेदांत सुना रहे हैं, साधकों का सुनाते चले जा रहे हैं। 7 दिन तक सुनाया, महाप्रभु जी हां भी नहीं बोले, उनको समझ में नहीं आया कि ये समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। समझता तो लोगों को आनंद हो जाता, मुख से हंसी आती, मुख प्रफुल्ल हो जाता, और नहीं समझ में आता तो प्रश्न कर सकते, ये कुछ भी नहीं। अरे जो महाप्रभु जी परीक्षित बन करके उनकी परीक्षा कर रहे हैं, उनके विचारों को देख रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं। ये हमारा भी गुरुवान तार ये है बैठा जो है ये चैतन्य महाप्रभु, ये नहीं समझ में आया। ऐसे ही कृष्ण अपने तरफ से जितनी भी बातें हो सकती हैं, क्यों आई हमको देखने के लिए, नहीं घर में लौट जाओ, अपने पतियों की सेवा करना तुम्हारा धर्म है, नए बच्चों को नरक भोगना पड़ेगा और सब चीजें तुम्हारी पड़ेगी। गोपियां देख रही हैं इसके अंतर की भावना क्या है। तब उन्होंने देखा सचमुच में इसकी अंतर की भावना बहुत सुंदर है। ये भी कपट रूप में कहा है कि तू कह रहा है थोड़ा सा छिपा कर, व्यपदेश रूप में कह रहा है छिपा कर क्या उसी को घोर सप्त नीचे विचारित किया। नीचे यह राष्ट्र बड़ी संदेहित है और यहां पर जंगली जानवर भरे पड़े हैं, पति लोग तुम्हें खोज रहे हैं, बच्चों को दूध पिलाना है, गायों का दूध काटना है, वो टकर रही होगी, जल्दी जाओ घर में। वो क्या कुछ समझ गए और समझ करके उन्होंने भी उसी रूप में उनको उत्तर दिया। ये केवल समझिए कृष्ण और ये गोपियां दूसरा कोई इसको सह ना पाएगा। लेकिन ये क्या जब उद्धव जैसे व्यक्ति नहीं समझ सके तो और क्या समझे। इसी चीज का आस्वादन करने के लिए और जगत को इसका थोड़ा सा एक किसी का पौधा देने के लिए कृष्ण है और भागवत इसीलिए हुआ। नौवत्तम और एकादश संस्कृत की बातें सब पुराण में लिखी गई है, शास्त्रों में लिखा गया, किंतु ये चीजें जो विशेष करके गोपियों का आसपन करते हैं, बेलूंगी भ्रमर भी जुगल भी इत्यादि की जो बातें हैं, ये किसी भी शास्त्र में नहीं है। भागवत भागवत के और भी दूसरे जगहों में और वेद उपनिषद इत्यादि की तो बात भी क्या है। इसलिए इसी के लिए कृष्ण आए थे, पांच अवसरों का आस्वादन करने के लिए, और उसमें से उस जगत को ये सब सुन करके उनके अंदर में ऐसी भावना है, यशोदा जी का वात्सल्य सुन करके ऐसी भावना आए कि मैं कृष्ण की मैया हूं, मैं कृष्ण का पिता हूं, और जन्म जन्मांतर में ऐसे ही मेरी भावना है, यदि सिद्धि मिल लेते मन ऐसे तो यशोदा मैया जी की भावना लेकर के वो साधन, यदि सखाओं की बातों को सुनकर यदि उनको इस विषय का लोभ हुआ, मैं कृष्ण के साथ में दो चार में जाऊंगा, कृष्ण के साथ में खेलूंगा, उनको आनंद दूंगा, उनकी सेवा करूंगा, कृष्ण दो चार करते करते और चले गए हैं कुसुम सरोवर, और कुसुम सरोवर से सूर्य कुंड चले गए, उनके साथ में कौन है, मधुमंगल जी, वहां से 3 बजे लौटे, वहां की जो लीलाएं हैं अभी गुप्त करा कर लौट करके आए, सखाओं से साथ मिले, सखाओं ने देखा कि अभी सूरत 1 मिनट के बाद ही लौट आया है, ऐसे लीला है, नहीं समझ सके, उन्होंने देखा कि कृष्ण थके हुए हैं, उन्होंने कृष्ण का सिर अपनी गोदी में रख लिया है, और एक सखा पैर दबाने लगा, एक सखा हाथों को दबाने लगा, एक सखा उनके सिरों को सहलाने लगा, कोई वो पत्नियों को हरी हरी लाल लाल पत्नियों को लेकर और उसका व्यजन बना करके इस प्रकार से कोई अपनी चादर से हवा कर, इसको देखकर के किसी के अंदर में ऐसा लोग उत्पन्न हो जो कृष्ण की ऐसी ही मैं सेवा कर हमारा जीवन का। इसके ऊपर में अभी राजपंचायत है इत्यादि की बातें बतलाई जो और किसी शास्त्र में नहीं है। कृष्ण के बंसी बजाने के बाद में गोपियां एक दूसरी को नहीं देखते ही अजगमु अन्नो अन्नम अलक्षितो जमा सभी अपने पेट में दौड़ी, कानों में कुंडल झूल रहे हैं, घर में कोई नहीं जा सकी, जो साधन सिद्धा की उसमें से कुछ जो है वो केवल रह गए, जिनके कुछ बच्चे पैदा हो गए अथवा अभी नित्य सिद्धाओं का संबंध नहीं हुआ ऐसे ही रह गए। इसके बाद में जो मायने पीछे से उनको भी उसने मिला दिया, कृष्ण के साथ में गोपियां नृत्य कर रही हैं, श्रीमद्भागवत में बड़े सुंदर रूप से बढ़ी, उनके निपुट छुटक गए, कृष्ण अपने हाथों से उसको पहना रहे हैं, और जब वो थक जाती हैं पसीने की बूंदे आती हैं अपने दुपट्टे से पीताम्बर से लेकर के मुंह को धूल कर रहे हैं और गले में हाथ डाल दे, ये लक्ष्मी जी को की पैदा लक्ष्मी जी का स्वभाव, सत्यभामा जी को नहीं हुआ, यहां तक कि रुक्मिणी इत्यादि को नहीं हुआ, सीता जी को नहीं हुआ, तो लक्ष्मी की तो बात की। किसी भी लीला में राष्ट्रिया उन्होंने कहीं द्वारा में तो 16,000 लोग किए थी, मैं रात एक दिन किया क्यों नहीं किया, ये वृंदावन को छोड़ करके कहीं भी रात नहीं हो, गोपियों के बिना रात नहीं हो, इसी रासलीला के लिए कृष्ण प्रकट हुए थे, और लीलाएं हो जाती इधर उधर, किंतु इस रथ का उत्पादन बिना ब्रज के नहीं हो सकता, ये वहां डायरेक्ट गुरु वृंदावन से ये लीला अवतरण किया है, सब जगह नहीं अवतरण, और ब्रह्मा के सब दिनों में एक दिन में एक बार ये लीला, तो उस समय में कृष्ण के नुकुर पान आ रहे हैं, गले में हाथ डाल रहे हैं, उनको मना रहे हैं, यहां तक कि कल एक प्रसंग आया था उसमें हमारे रसानंद ब्रह्म क्या ने बतलाया, गोपियों के साथ में कृष्ण की लीला ये क्या थी, कामदेव पर विजय की लीला थी, ठीक उसने कहा कुछ हम सकता पूरा ठीक नहीं। अंतिम रूप में 100 में 1/100 ये ठीक रहा। अब बाकी 99% को कुछ गड़बड़ दी। किस लिए? यहां तक तो ठीक है। ब्रह्मा जी काम तवक के द्वारा मोहित हो गए। ऐसे ही एक चीज ही है, भगवान पर जिस पर विशेष कृपा नहीं है कामदेव को विजय नहीं कर सकते। शंकर जी भी कामदेव पर विजय नहीं कर सकते, बल्कि क्रोधित हो गए। वो काम नहीं सही, ये भी काम है। इसलिए क्रोध होना भी वही काम की परिणति है, इसलिए क्रोधित हो गए। उनकी तपस्या एक तरह से भंग हो गई, इसलिए कामदेव को वो जीत नहीं। इंद्र इत्यादि और विश्वामित्र इत्यादि की बातें कही गई, ब्रह्मा की भी बातें उसने बतलाया। किंतु कृष्ण के लिए कहा कि ये कामदेव पर विजय मिलती है। कैसे? इसलिए नारद प्रभृति भी कामदेव से बच नहीं सके। 16,000 जो गोपियां हैं या 16 करोड़ जो गोपियां हैं, लक्ष्मी जी से भी सुंदर है। रात का समय बहुत ही चांदनी रात, जमुना जी कलकल बह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कृष्ण, कृष्ण भी किशोर गोपियां भी किशोरी, सबसे सौंदर्य उस समय बढ़ा हुआ है। जितनी भी सामग्री चाहिए वो सब समय वहां पर मौजूद है। जागतिक विषय से कृष्ण रात के प्रारंभ में ही सब गोपियों को छोड़ दिया। अतः तुमने काम नहीं है जिससे परवाह नहीं। काम का तात्पर्य क्या है? आदमी कुत्ता बन जाता है, उसमें फलाफुरा का ज्ञान नहीं रखता। शंकर जी मोहिनी के पीछे कुत्ते से भी अबदतर होकर के दौड़ पड़े। ज्ञान नहीं रहा, पार्वती जी लज्जा दे रही हूं, ये तू क्या कर रहा है, इस स्त्री के पीछे पीछे भगा जा रहा है, अरे तुम्हारे वस्त्र गिर गए, मृगशाला कहां चला गया, तुम्हारी ये सब मालाएं किधर गई, तुम्हारा वैराग्य कहां चला गया, वैराग्य का भूत कहां गया। और नहीं रहा शंकर को, जिन्होंने कामदेव को चला दिया है उन्होंने। इसलिए यहां पर कह रहे हैं कृष्ण ने क्या किया, नित्य कर रहे हैं, उसे मिल रहे हैं, सब प्रकार की कामों की वहां पर सब व्यवस्था है, तभी कृष्ण ने उनके तरफ में नहीं देखा और उनको छोड़ दिया। वो कुत्ते नहीं पड़े, उस समय ये सब बिलख बिलख करके रो रही है। एक को साथ ले लिया, पर ये अभी भी तो कामदेव उनके साथ में है, राधा जी के साथ में गए, उनका श्रृंगार कर रहे थे। यहां तक राधा जी ने कहा अब मैं चल नहीं सकती, अब जहां चलना है मुझे लेकर के चलो। अच्छा तुम हमको ऐसा समझती है, मैं तुम्हें कंधे पर लेकर के चलू, अच्छा तो कंधे पर बैठो तो देखा जी कहीं नहीं सुन, अरे किधर गए किधर गए, ये कामी पुरुष का काम है, वो तो जैसा कहेगा कहेगी वैसा करेगा। आप लोग इस विषय में वो टीवी देखती है ना, तो ये खूब अच्छी तरह से देख रहे हैं। टीवी बनाने वाले को बहाया नहीं है, आज हमारा सारा समाज बहाया बन चुका है। जो बहाया बनना या बननी नहीं चाहती है या बनना, वो बिल्कुल को भी बहाया है। अपनी कुआरी लड़कियों को भी साथ में लेकर बैठ सके दिखना, इसलिए हमको अधिक नहीं बोलना कि कैसे कामी को या कामी स्त्री पर कैसी दशा हो जाए। कृष्ण ने क्या किया? अभी भी फटफटाने लगी, किंतु इसमें देखने की बात ये कामदेव की के ऊपर में कृष्ण के लिए विजय, ये सब एक दिखलाने के लिए ऊपर की बात है। कृष्ण का अवतार इसलिए हुआ ये कामदेव पर उन्होंने विजय कर लिया, ये दिखलाने के लिए ये भागवत का तात्पर्य है। इसलिए गोपियों के प्रेम के अधीन, जसोदा के प्रेम के अधीन, सखाओं के प्रेम के अधीन ये दिखलाना है। इस रस को कभी भी आस्वादन नहीं, सतयुग में उनके अधीन हो गए। इसलिए आगे के बातों में यह दिखलाया गया है। अभी ब्रह्मचारी जी स्मरण कर रहा था। गोपियों ने रात के बाजुओं का ध्यान होने के बाद भी जब कृष्ण आए तो मनमत रूप को प्रकाश किया। ऐसा रूप कभी भी उनका नहीं था। जो यशोदा जी के लड़के हैं बड़े सुंदर हैं, सखाओं के जो सखा कृष्ण हैं वो बहुत ही सुंदर हैं, रुक्मिणी सत्यभामा के कृष्ण बड़े सुंदर हैं, किंतु गोपियों के जो प्रिय हैं वो कृष्ण और गोपियों के चारों तरफ से परिवेक्षित हैं। और उस समय कुछ लज्जित से होकर के, कुछ मुस्कुराते से होकर के, कुछ आंखों का कुंचन करते हुए मुस्कुराते हुए उनके दिए हुए पुष्करिया के बर्तनों पर बैठे। वही माला वैजयंती माला, वही दुपट्टा जिनको गोपियों ने कृष्ण को माला दी थी, और वही दुपट्टा, वही दुपट्टे का अर्थ क्या? जब कृष्ण पूछ रहे हैं ना उनके मुख, तो उनके उत्तरीय में कुमकुम इत्यादि लगे होंगे कि नहीं, ये दिखाने के लिए उस दुपट्टे का जिक्र कर रहे हैं। वह दुपट्टा जिसे कृष्ण गोपियों के पैरों में लगे हुए कुमकुम या अंगों में कुमकुम को अपने दुपट्टे से उठाते हैं, ये प्रेम का वचन। इसलिए कृष्ण के प्रति यदि गोपियों जैसा प्रेम हो तो कृष्ण परब्रह्म होकर के भी ऐसे भक्तों की चरण की धूल की और कुमकुम को झाड़ने के लिए अपना पिया गया जो उत्तरीय है, जो पितम्ब है, इसको व्यवहार करके भी थकते नहीं है और अपने को भी कहते हैं। गोपी ने पूछा और ये बतलाया ब्रह्मचारी जी ने शायद 10 बज गया होगा, समय भी हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा जिक्र कर